ओम शांति। तो आज संसार में एक भूत है। कौन सा भूत है? हाँ, भय
कौन
का भूत। आज की
है?
मुरली में बाबा ने जिक्र किया भय का भूत। तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, निर्भय हो, निर्भय राज्य स्थापन हो रहा है, लेकिन संसार में भय का भूत है। भय में खा रहे हैं, भय में सो रहे हैं, भय में जी रहे हैं। चारों तरफ भय का माहौल है, भय का वातावरण है। तो इस भय से मुक्त होने के लिए बाबा ने हम सबको कौन सी उपकरण बताई? बाबा ने कहा तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, तो कौन सी युक्ति है जिससे संसार में संसार वालों को भी हम भय से मुक्ति का मार्ग दिखा सके? उससे पहले हमें स्वयं को भय से इतना संपूर्ण रूप से मुक्त करना होगा, तभी तो दूसरों को रास्ता बता सकते हैं। तो कौन सी ऐसी युक्ति हो जिससे हम दूसरों को भी भय से मुक्त कर सकें, उनको रास्ता दिखा सकें, कोई टेक्निक बता सकें? क्या टेक्निक होगी? कैसे करेंगे भय से मुक्ति सीखो? पहले
पहले तो खुद बचेगा।
तो खुद, और उसके लिए बाबा ने कौन सी युक्तियां बताई? सबसे पहला पाठ हमारा जो है मुक्ति, मनुष्य को डर किस चीज से लगता है? मृत्यु से लगता है। अज्ञात डर तो दूसरे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान समय जो डर है मृत्यु का डर सारा है मनुष्य। और ये दुश्मन है, अदृश्य है ये, और ये पकड़ में भी जल्दी नहीं आता, धीरे धीरे अपना काम करता रहता है। तो ऐसे हम सबको बाबा ने जो पहला पाठ पक्का करा है, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा, तुम्हारी तो मृत्यु होती ही है, मृत्यु तो शरीर की होती है। तो संसार में बॉडी कॉन्शियस वश मनुष्य जीवन जीते हैं, अनेक प्रकार की उनमें तमन्नाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए वो अपनी कुछ जिंदगी लगा देते हैं, और इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, या उनको पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां करते रहते हैं, सहयोग नहीं मिलता है, किसी की मदद नहीं मिलती है, तो कई प्रकार के भूत पीछा करते रहते हैं। चाहे इच्छाओं के भूत है, भय का भूत है, अनावश्यक कामनाएं हैं, या विकारों के भूत है, उन भूतों के वश संसार में मनुष्यों की हालत क्या हो गई है। तो बाबा ने हम सबको उन आत्माओं को रास्ता बताने के लिए, उन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, दुख अशांति से छुड़ाने के लिए हमारा चयन किया है, हमें ढूंढा है, निकाला है। विशेष रूप से हमारा चयन हुआ है कि तुम आत्मा ही वो कर्तव्य कर सकती है। तो स्वयं को हमें कितना नशा होना चाहिए, वो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा चयन भगवान ने किस लिए किया है, ना केवल हमें अपने जीवन को सवारने के लिए, बल्कि संसार को रास्ता दिखाने के लिए किया है। मुरली में जिक्र है कि तुम विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के निमित्त हो, विश्व की आत्माओं को खुशी दिलाने के निमित्त हो। तुम खुश रहेंगे तो विश्व खुश रहेगा, तुम जीवन जीवन में दुख अशांति से मुक्त रहेंगे, वो भी जीवन में दुख अशांति से मुक्त होंगे। तुम बदलेंगे, वो बदल जाएंगे, विश्व बदल जाएगा। तुम बदलेंगे, प्रकृति बदल जाएगी। तुम पावन बनेंगे, प्रकृति पावन बनेगी। तो हमारा, हम जो है इस विश्व के फाउंडेशन है, जो भी नए संसार की कलम लग रही है उसके हम फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन कितना मजबूत है, जिस पर पूरी बिल्डिंग का आधार है, पूरी बिल्डिंग उस पर चलेगी, वो हम पूर्वज हैं। तो कितना वो ध्यान रखना पड़ता है पूर्वजों को, अपनी वंशावली का। तो वहां हमें कितना ऊंचा दृष्टिकोण से हमें स्मृतियां दिलाई हैं कि तुम कौन हो, विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो ये जो मुरली है बहुत सुंदर मुरली है। कोई भी मुरली को पहले भी हम कई बार जिक्र करते हैं, जितना हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो पक्का होता जाता है, और वो पढ़ने से कुछ नए नए ऐसे गहरे बिंदु मिलते हैं जो हमारे दिल को छू लेते हैं और हमारे अंदर जो सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। नहीं तो वो ज्ञान वहीं का वहीं रह जाता है। जितना बार हम उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे, नजर डालेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ उसके बारे में सोचेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, तो लगता है कि सचमुच हाँ ये हमारे तो ओरिजिनल संस्कार ही यही सारे।
बुद्धि रिफाइन होती,
बुद्धि रिफाइन होती, बुद्धि का एकदम बुद्धि सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, उसमें एक अंदर में आग लग जाती है। बाबा ने कहा ना, जो बाप के गुण कर्तव्य हैं वो इसमें महात्मा के गुण कर्तव्य हैं। तो इस मुरली में बहुत सारी बातें हैं, 24/5/2020 और मुरली की ओरिजिनल डेट 15 जनवरी 1986। तो ये गोल्डन जुबली का चल रहा था दौर, तो इस जो भी इस सीजन की जो मुरलियां चली थी गोल्डन जुबली से संबंधित बाबू ने लगभग कई मुरली में जिक्र किया, इसमें भी थोड़ा बहुत जिक्र है। तो ये मुरली का हेडिंग है सस्ता सौदा और
बचत
का बजट बनाओ। तो संसार में भी बाबा ने कहा, इसमें जिक्र किया, वो गवर्नमेंट क्या बजट बनाती है, बिजली पानी मकान, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, जिसको रोटी कपड़ा मकान भी संसार में मुख्य तौर पर कहा जाता है, मनुष्य को जरूरतें हैं जी, बुनियादी जरूरतें हैं। तो वो तो बजट बनाते हैं बिजली पानी का मकान का, लेकिन हमारा कौन सा बजट होना चाहिए, वही बाबा ने जिक्र किया इसके बारे में। फिर बाबा ने हमको ये भी बताया कि संसार में वेस्ट कितना जा रहा है, आजकल संसार में वेस्ट को इन्वेस्ट करने की युक्तियां अपनाते हैं, तो तुम बच्चों का भी क्या क्या वेस्ट जा रहा है ये अपना चेक करो, चाहे वो चार्ट में क्या क्या देखो, ये भी बाबा ने हम सबको इसके बारे में बताया। फिर बाबा ने एक जिक्र किया कि गोल्डन जुबली बना रहे हो, है ना, गोल्ड के बारे में, तो रियल गोल्ड की बताए, रियल गोल्ड कैसे बनता है, उसको आग में डाला जाता है, अगर उसमें खाद है तो खाद को निकालने के लिए उसको आग में डाला जाता है। तो तुम्हारे में भी कोई ऐसे संस्कार तो नहीं है, मेरे मेरे के संस्कार, उन संस्कारों को हमने जलाया है क्या, तो उस पर भी हमको स्वयं पर अटेंशन रखने की जरूरत है, समय समय पर चेकिंग करने की जरूरत है, तो वो वाली चीज है। फिर बाबा ने इसके बारे में भय के भूत की बात की कि आजकल संसार में कैसे जी रहे, तुम कैसे जी रहे हो, तुम बेफिक्र बादशाह। और इस फिर इस जिक्र मुरली में क्या है कि नामी ग्रामी आत्माएं हो, तुम हमारा डायरेक्टरी कौन सी है, संसार में डायरेक्टरी बनाते हैं हु इज हु, और तुम कौन हो, लिस्ट निकालो, तो तुम कौन हो, भगवान की डायरेक्टरी में वी आई पी। बाबा ने और भी मुरली में कहा, कई बार पहले भी सुना हुआ मुरली में, तुम बी वी वी आई पी, जितने भी बी लगाओ कम है, वो इतने संसार में विशेष आत्मा है तुमको। तो ये था। फिर बाबा ने कहा सौदागर, तुम सौदागर हो, रत्नागर बाप से सौदा करने वाले बच्चे सौदागर हो, तो कैसे सौदा करते हो, ये कितना बड़ा सौदा है, कितना समय में कर लेते हो, कैसे करते हो और कितने समय तक चलता है, ये वाला जिक्र। फिर इसके मुरली के अंदर बाबा ने कुमारों से बात की है, कुमारों के बारे में बताया, कुमार अर्थात क्या क्या है, निर्बंध है, स्वतंत्र है, उड़ता पंछी है, लकी है, तो कुमारों को स्वप्न में भी कोई ख्याल तो नहीं आता है, ये वाली चीजें भी है। कुमारियों के बारे में बाबा ने जिक्र किया, कुमारियां अर्थात सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली, जो उनको लिफ्ट मिली हुई, गिफ्ट मिली है, श्रेष्ठ लिफ्ट की गिफ्ट है ये, तो इसको, इस लिफ्ट की गिफ्ट को अगर लगाते हैं शक्तिशाली होंगे तो शक्तिशाली सेवा होगी, कमजोर है तो कमजोर रहेंगी, और ट्रेनिंग वाली कुमारियां हैं उस समय ये, तो बाबा ने कहा जो नियमित आत्मा है जिनके आप संग में रहती हो, उनके डायरेक्शन अनुसार चलते रहो तो आगे बढ़ती रहेंगी। फिर सेवादारी टीचर्स मैन है, उनके बारे में था कि नियमित अर्थात सदा स्वतः सफलता प्राप्त करने वाले, और कैसे क्या क्या उनमें गुण होना चाहिए, उमंग उत्साह, हिम्मत इन आत्मा को हिम्मतवान बनाना, ना उम्मीदवार आत्मा को उम्मीदवार बनाना, ये वाली चीजें हैं। फिर बाबा ने कहा सबसे ज्यादा खुशी किसको है, बाबा ने कहा नशे में क्यों नहीं कहते हो, मेरे को है, तो खुशी क्यों है वो भी बाबा ने बताया, और समीपात्माओं के लक्षण क्या क्या है, ये सारा मुरली में जिक्र है। तो कुछ 10-12 बातें हैं जिन पर हम आपस में मिलकर गहराई से चर्चा करेंगे, सारे दिन में उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, देखेंगे स्वयं के अंदर में, दिल दर्पण में, कि मेरे में कौन कौन सी अभी भी खामी है जिनको हम जांच करके बाहर निकालना है। क्योंकि ये दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ बहुत सूक्ष्म होता जा रहा है और स्वयं के प्रति बहुत गहराई से नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि जैसे जैसे समय समय पाता जा रहा है, हमारी कमजोरियां ही हमें चारों ओर से घिरने का प्रयास करेगी। दूसरों से निपटना आसान हो जाएगा, लेकिन मनुष्य को अपने कर्म ही ऐसे बांध देते हैं जो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उनसे लगाव है, अटैचमेंट है, हम उनको उस दायरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लंबे समय तक मनुष्य जहां रहना शुरू कर देता है तो वहां उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बड़ा निर्लिप्त अवस्था चाहिए हमारी इस पुरुषार्थ के मार्ग पर। जहां भी हम जिस भी स्थान पर रहते हैं, चाहे लौकिक में है चाहे अलौकिक में है, जिस भी क्षेत्र में है, सबसे डिटैचमेंट होना बड़ा जरूरी है। इसलिए अधिक से अधिक तो हमें स्वयं से डिटैच होना बहुत जरूरी है। इस देह रूपी घर से उतने डिटैच जैसे हम स्वेच्छा से कपड़े उतार लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, चलते फिरते हमें यह आभास रहता है कि मैं ड्रेस पहन के चल रहा हूँ, पहनी हुई है ड्रेस। अगर एक संकल्प के कि मुझे उतारने तो एक सेकंड में पता है कि उतर जाएगी, उसमें हमको दूसरा प्रश्न नहीं होता है। क्योंकि हम हमारे में वो तकनीक उतारने की हमारे में ताकत है, इच्छा है। उसी तरह हमको चलते फिरते हुए भी निरंतर स्मृति रहनी चाहिए कि मैंने ये देह रूपी ड्रेस पहनी हुई है, जब चाहे इन कपड़ों को उतार दो, जब चाहे पहन, कल के प्रदान में था, जब चाहे सार में है, जब चाहे विस्तार में है, एक सेकंड में शरीर में, एक सेकंड में शरीर में, शरीर से परे जाए। तो हमको लंबे समय से प्रैक्टिस करनी है और जितना हम इस प्रैक्टिस का अभ्यास इतना मजबूत करेंगे तो ये हम अनेक प्रकार के जो संसार में भय हैं उनसे मुक्त हो सकेंगे। भय से मुक्ति का एक ये शक्तिशाली तरीका है अशरीरी होने का भी। तो हमको लंबे समय तक किसी अभ्यास में रहना, चाहे हम चलते फिरते हैं, स्मृति में रखना है हमको कि मैं हूं कौन। चाहे हम योग में बैठे हुए हैं तो हमको इस बॉडी से डिटैच होना है, जैसे हम इस संसार में है नहीं। उसके लिए बाबा ने बहुत सारे में को सम्मान भी दिया है कि तुम चलते फिरते अपने को मेहमान समझो, चलते फिरते फरिश्ता समझो, चलते फिरते अपने घर की स्मृति रखो के पार्ट ड्रामा में पूरा हुआ है, अब हमको वापस लौटना है, अपने घर जाना है। तो मनुष्य को घर से लगाव होता है वास्तव में। तो वास्तव में हमारा तो ये संसार तो टेम्परेरी है। हम तो एक सुख शांति की स्थापित करने के लिए बाबा ने हमको थोड़े समय के लिए चुना हुआ है, हमको तो वापस लौटना है। क्योंकि स्मृति दिलाना कि वापस हमको घर बुला रहा है, जो जिस घर तक सबको पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सबको बाबा ने दी। बाबा ने कहा तुम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग, मुक्ति की इच्छा सबको है, भले उनको पता नहीं है कि मुक्ति कहाँ क्या है, क्या चीज है, लेकिन जहां उनको पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये वाली चीजें नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुरली में बाबा ने कहा है कि कौन आया मिलने किसको, रत्नाकर बाप, किसको मिलने आया है, सौदागर बच्चे हैं जो सौदा करने वाले हैं, उन बच्चों को देखकर बाबा मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं,
इतना बड़ा सौदा कर लिया,
भोले वाले बच्चे हैं। और कैसे कर लिया सौदा, दिल से, एक सेकंड में, कितने समय में, एक सेकंड में दिल से क्या बोला, मेरा बाप। और कितना बड़ा सौदा कर लिया,
एक जन्म
के थोड़े से समय में 21 जन्म का सौदा कर लिया, 21 जन्म के लिए माला हुआ बन गया। तो बताइए हम इस संसार में, फिर बाबा ने एग्जांपल दिया कि इस संसार में भी हद का सौदा करने वाले भी होते हैं, लेकिन वो हद का सौदा करने वाले भी बाद में गारंटी नहीं है उसकी कब तक चलेगा। उसमें मेहनत भी है, समय देना पड़ता है और उसमें महंगा भी है वो सौदा, लेकिन ये वाला सौदा ना मेहनत है ना महंगा, ना समय देना पड़ता है, एक सेकंड में दिल से होगा। जैसे हम अगर किसी को बड़े प्यार से, जिसकी जो इच्छा हो सुनने की, उसी समय हम कुछ उसको बोल दें तो जैसे उसके दिल पर एकदम बहुत हमारे प्रति शुभ भावना पैदा होती है, राहत मिलती है उसको, एक ही शब्द बोलेंगे तो वो अपना देने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमने दिल से बाबा को बोला मेरा बाबा, अर्थात स्वीकार किया, मेरा बाबा माना जो बाबा की प्रॉपर्टी हो हमारी होगी, बाबा हमारे अर्थात वो भूलों का भगवान है। जिक्र किया बाबा ने कि भूलों का भगवान है, डायरेक्टर डायरेक्टर का जिक्र किया, डायरेक्टर में किसका नाम है, भोले वाले बच्चों का, जैसे दिखाते हैं ना कि नारद जी जा रहे थे तो रास्ते में भगवान जी मिले, तो पूछा भगवान जी क्या आप क्या देख रहे हो रजिस्टर में, भगवान ने रजिस्टर खोला हुआ था तो बोला मैं देख रहा हूँ कि इसमें ऐसा कौन सा भक्त है जो मुझे बहुत याद करता है। तो नारद ने सोचा मेरा नाम है पूरा, तो पूछा नारद जी ने किसका नाम, बोला नारद जी का नाम, तो बड़ा खुश हो गया वो। तो फिर वो तो कई दिन तक नशा कर रहा था, फिर घूमते घूमते एक दिन फिर आया भगवान के पास, तो भगवान फिर रजिस्टर देख रहा था, तो फिर पूछा नारद जी आज क्या देख रहे हो, बोला आज मैं वो देख रहा हूँ जिनको मैं याद करता हूँ, उसमें पहले कौन है। तो नारद ने सोचा नहीं हुआ, तो भगवान जी ने कहा नहीं हनुमान है इसमें, उसके दिल में समाया हुआ। तो ऐसे हमने दिल से अगर बोला है, दिल में भगवान को बसा लिया है कि दिल से कहा मेरा बाबा है, तो वो बच्चों का स्मरण करता है, उन बच्चों को संसार में वो ढूंढने के लिए लगा हुआ है कि जो संसार को नई रोशनी दिखाने वाला है। पिछले संडे की बोली में तुम पिछले संडे की तुम संसार को विश्व परिवर्तन की तुम रोशनी हो। तो हमारे दिल में अगर बाबा के प्रति प्यार है, बाबा को हमने अपने दिल में बिसा के रखा है, अर्थात उसके महावाक्यों का हम बार बार स्मरण करते रहते हैं, उनको निहारते रहते हैं, उनसे हमको प्यार है, उसको याद करते रहते हैं, उनका हम चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और वैसा माहौल बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं, तो उन बच्चों के दिल में बाबा समाया हुआ है। और रजिस्टर फिर वो दूसरे वाला रजिस्टर है, नहीं तो पहले वाला भक्तों का रजिस्टर है और दूसरे वाला उनका रजिस्टर है जिनको भगवान याद करते। तो कितनी बड़ी बात है, सौदा कितना बड़ा है, भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारी प्रारब्ध तैयार हुई है बैठे बैठाए घर में, कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं। वर्तमान समय तो बाबा ने वही जो अनेक मूल्य में का मनसा सेवा की होते हैं और वर्तमान वही है, और मनसा सेवा करने के लिए बुद्धि की बहुत सच्चाई सफाई चाहिए, बहुत प्योरिटी चाहिए इसमें, बहुत इसमें एकदम पवित्रता चाहिए, एकदम शुद्ध विचारों का भंडार मौजूद चाहिए। नहीं तो अगर हम पुरानी बातों में उलझे रहेंगे, अतीत के ख्यालों में हम अपने मन को व्यस्त रखेंगे, या किसी के बारे में पर चिंतन परपंच सोच रहे हैं, जैसे परसों के मुरली में था ना उन्होंने कहा कि दूसरों के बारे में पर चिंतन करते हैं, क्या है ये धोती बना है, तो दूसरों के बारे में है और अपने बारे में जो अतीत बीत चुका हुआ है
ज्ञान के उसको भी हम बात कर रहे हैं, तो
इस ज्ञान के अलावा बाबा के ज्ञान के अलावा अगर किसी भी बात का हम चिंतन करते हैं तो सब धोती बन गए। इस एक ही सेंटेंस को अगर हम पकड़ लेंगे तो ये सेंटेंस हमको कितना ऊंचा ले जा सकता है कि एक ज्ञान के सिवाय कुछ भी सोच रहे हो सब धोती बन गए। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कौन सी बातें कर रहा है, क्या योजनाएं बना रही है, ये सब धोती बन गए। कितनी बड़ी बात है, ये सेंटेंस भी अगर हमको निरंतर स्मृति में रहता है तो हमारा बचत का बजट धीरे धीरे बढ़ता जाए, हमारी नसें खुलती जाएंगे और उसकी आशीर्वाद उसकी कृपा होती जाएगी। आज की मुरली में भी वरदान में आशीर्वाद की बात है कि आशीर्वाद किन को मिलता है, जो दान करते हैं इसमें, और आशीर्वाद मिलने से उनके अनेक आत्माओं को उनको दुआएं मिलती हैं, स्वतः उनको रास्ते खुल जाते हैं। तो देखना है हमको कि बाबा का एक एक महावाक्य कैसे हमारे जीवन में समाता जाए, कैसे हमारे जीवा पर वो सरस्वती निवास कर दिया, अर्थात जो बाबा ने मुरली में जिक्र किया कि जो बाप के गुण वही कर्तव्य, जो बाप के कर्तव्य वो समीप आत्मा वो समीप स्तर है उनके लक्षण है। तो दिन प्रतिदिन हमको ये आभास होना चाहिए कि हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, जो बाबा की सोच है वो हमारी सोच इक्वल होती जानी चाहिए, उसमें जो अंतर है वो धीरे धीरे समाप्त होते जाना चाहिए। और एक दिन की बात नहीं, लंबे समय का प्रयास, जैसे हम सब ने दादियों के जीवन में देखा, तो दादियों के जीवन में जितने भी उन्होंने सुमन संपर्क में आते हुए जितने भी उनके मुख से वचन निकले हैं, तो कोई भी ऐसा संसार के वचन नहीं निकला उनके मुख। बाबा से संबंधित ही निकला। यज्ञ की हिस्ट्री से लेकर संसार में जितनी भी सेवाएं हुई हैं, कैसे बाबा ने निमित्त बनाया, क्या क्या अनुभव कराए, वो सारा उनका जीवन जो है बाबा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। बाबा के महावाक्यों में ही वो रमण करते रहे, इसलिए उनको क्लास कराने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। अभी आजकल जो ग्रुप में आ रही क्लासेस आदि रत्नों की वाणी, तो देखा और सुना होगा, वो तैयारी करके थोड़े नहीं बैठे हैं कि हम ये जाके सुनाएंगे। और नेचर उनके जीवन का अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है, और अनुभव सुनाने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो तो प्रैक्टिकल में होंगे जो जीवन में बिता हुआ है। जैसे परसों के मूल्य में भी था ना कि संसार में ज्ञान तो बहुत है, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं है, अनुभव नहीं है ना, अनुभव नहीं है आत्मा का वो। तो हम जो दादियों की आदि रत्नों की जो वाणी सुनकर सुन रहे हैं आजकल, चंद्रमन दादी की सुनी, कमलमणि दादी की सुनी, प्रकाशमणि दादी की सुनी, जानकी दादी की सुनी, तो इनमें अनुभव समाया हुआ कोट कोट, प्रैक्टिकल लाइफ है वो, दर्पण है। जैसे बाबा ने इस मूल्य में भी जिक्र किया है, जो समीप आत्मा है उनके मुखड़े से साक्षात्कार होगा बाबा का, दर्पण बन जाएगा वो, भले चेहरा आपका दिखाई देगा लेकिन वो बाप दादा उनको अनुभूति होगी, है ना। जैसे हम भी अगर कोई योग में बैठा है, बहुत अच्छा प्यार में लवली नमस्ता है, तो हमको उसकी याद थोड़ी नहीं आती है, क्या याद आती है, हमारे संकल्प क्या होते हैं, देखो बाप के प्यार में कितना प्यार है, मगन होकर बैठा हो, लवली नमस्ता है। तो वो प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में परिवर्तन तभी होगा जब हम ईश्वरीय महावाक्य को दिल में समाएंगे। जैसे हनुमान है ना, सीता के पास गया तो मन को देख कर भाई, वो एक माला को तोड़ तोड़ के देखते, तो मन को क्या ढूंढ रहे, इस जिस मन के में राम का नाम ही है तो उसमें उसको मैं क्यों पकड़ू। तो उसी तरह जिस महावाक्य में अगर भगवान से रिलेटेड नहीं है या संसार से, संसार का कल्याण करने से संबंधित वो महावाक्य नहीं है, तो वो भी हम जैसे भगवान के दिल से दूरी बनाए हुए। तो दिल से कहा तो अपने दिल पर हाथ रख के पूछना कि सचमुच हमारा दिल दिन प्रतिदिन स्वच्छ होता जा रहा है, या इस दिल में भगवान का प्यार भरता जा रहा है, इस दिल में कोई दूसरे को तो नहीं बैठा के रखा हुआ है, उनको तो नहीं स्थान दे के रखा हुआ है। तो एक सेकेंड में दिल से मेरा बाबा कहा और कितना बड़ा सौदा ले लिया, गारंटी है संसार में तो गारंटी नहीं है और यहाँ तो गारंटी, तो कितनी बड़ी बात है। तो रत्नागर्भ आपके पास है क्या, व्रतों के खान है, उन ज्ञान रत्नों से, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमने अपनी जोड़ी को कितना भरा है, वो हमको चेक करना है। नहीं तो अगर वो जोड़ी में नहीं भरा है तो दूसरी बातें भर के रखेंगे, और भी बातों का वातावरण बनता है या दिन प्रतिदिन। तो सबसे पहली बात जो कही बाबा ने, रत्नागर बाप सौदागर बच्चों को देख मुस्करा रहे हैं, है ना, तो एक सेकंड में कितना बड़ा सौदा कर लिया, भविष्य की जन्मों के प्रारब्ध जमा कर लिया, तो वो उनको चेक करना है। फिर बाबा ने कहा भूलूंगा भगवान है नामी ग्रामी डायरेक्टली संसार में हो इज हु बनाते हैं कि सबसे नामी ग्रामी कौन है बिजनेस में। तो बाबा ने कहा बाप को भले चतुर सुजान कहते हैं लेकिन उसको चतुराई कौन सी चतुराई, संसार वाली चतुराई पसंद नहीं है उसको, वो बाहर मुखी वाली चतुराई पसंद नहीं है, अंतर्मुखी बच्चे पसंद, उसको बोले वाले बच्चे पसंद है, जो दिल से बाबा को याद करते हैं, दिखावे की बात नहीं है, अंदर ही अंदर बाबा को दिन रात अजपा जाप, जो बाबा ने अभी साकार मूल्य में तीन चार दिन पहले चेता अव्यवचारी याद। अगर भक्ति भी करते हैं तो बाबा ने कहा सबसे अच्छी भक्ति कौन सी है, अव्यवचारी शिव की भक्ति, वो याद करना अच्छा है। तो हमको चेक करना है कि सारे दिन में जो भी हमको टाइम मिलता है तो क्या हमको उस टाइम में वो भगवान के प्रति वो आकर्षण होती है, कि उसके दिल पर हमारा नाम लिखा हो कहीं ना कहीं, वो तो स्थान होना चाहिए ना, इतना बड़ा सौभाग्य है। तो बाबा ने कहा चतुर्सुजन बाप है लेकिन बच्चों उसको बोले वाले पसंद है, लेकिन बच्चों ने भी तो चतुराई की कौन सी, अपना क्या दिया और क्या पाया, काक पर देकर लखपति बन के संसार में उद्धार की बात भी की ना, है ना। तो फिर बाबा ने इसके आगे कहा कि वो तो संसार में भय से जी रहे, लेकिन तुम निर्भय हो, तुम निर्भय राज्य है तुम्हारा, और वो भय में सोते हैं, भय में खाते हैं, लेकिन तुम आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। तो सचमुच हमारा बेफिक्र बादशाह जीवन है। फिक्र उसको होता है जिसको भविष्य के लिए कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, भविष्य जिनका स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं जिनको दिखता है, अंधेरा है जिनके भविष्य में, जिनके भविष्य में कोई आशा की किरण नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, भविष्य को लेकर हिम्मतहीन है या अशंकित है। तो बाबा ने हमारे भविष्य को कितना सुंदर बना दिया, और भविष्य का आधार हमारा वास्तव में वर्तमान है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा, उस बीज की हमको सार संभाल करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। वो दिन बाबा इतना बोले में कि दो ही अक्षर है ये सार ज्ञान का सार, बीज और झाड़। तो हमने अपने मन बुद्धि में, मन बुद्धि की धरती पर कौन कौन से ज्ञान के बीज बोए हैं, अंकुरित किए हैं, उन बीजों का कैसे हम लालना पालना कर रहे हैं, साफ संभाल कर रहे हैं, उनको हम बढ़ा रहे हैं, तो वो हमको चेक करना है कि जो भी ज्ञान धन मिला है, इस ज्ञान धन को हमने बुद्धि में रखा, इसलिए हम बेफिक्र बादशाह है। संसार में वो विनाशी धन, इसलिए उनको भय है क्या हो जाएगा। और पिछले संडे की मुरली में था ना संगम के बारे में, जमा के ज्ञान, जमा का खाता, तो वो भी हमको देखना है। अगर हमारे पास जमा का खाता है तो कोई चिंता नहीं है, अगर जमा नहीं है तो उसमें आने पर क्या होगा, भूख मरेगी। अभी संसार में क्या हो रहा है, जिसने अगर थोड़ा बहुत रखा हुआ था अभी लॉकडाउन के कारण तो थोड़ा खा पी रही है, और जिनको नहीं है तो क्या चिंता होगी, कितने प्रकार की चिंता है। रोजी रोटी का जुगाड़ करने में कितनी मुसीबतें होंगी लोगों को आज, और ये समस्या तो अचानक आनी है। अब ये एक ही समस्या ही अचानक आई, इस समस्या से पूरा संसार जैसे एकदम भील के आएगी। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं हुई जो इससे अशुद्धि हो, हर एक आत्मा को झकझोर दिया अंदर से, लेकिन बाबा के बच्चे एकदम निश्चिंत है, क्योंकि बाबा ने पहले से कहा। बाबा के बच्चों को तो और ये एक वरदान इसमें मिल गया अपना जमा का खाता बढ़ाने के लिए।
इसमें भी वो भय में है जो पुरुषार्थ नहीं कर,
हाँ इसमें भी फिर गौर करने की बात है। जिन्होंने तो अपने लंबे समय से आदत बना रखी है, तो वो तो इस समय का पूरा सदुपयोग करने के लिए पूरा सफलता प्राप्त कर रहे हैं, वो निश्चिंत है। वो तो हमने देखा, हम मधुबन में प्रैक्टिकल में देखते हैं जिनकी आदत पड़ी है, बड़े आराम से बाबा को याद कर रहे हैं, खुशी है। और अगर नहीं है वो प्रैक्टिस, तो सारे दिन में वो दूसरी चर्चाएं चलती रहती है। और ये तो एक बाबा के ओर से, बाबा की ओर से हमको एक वरदान इसमें मिला है। अभी भी अगर हमने पहले से हमको आदतें नहीं पड़ी है सुंदरी की, तो अभी भी हम अगर नई आदतों को कुछ निर्माण करें जो हमारे पुरुषार्थ को तीव्र गति प्रदान कर सकें, तो बाबा की सचमुच मदद है। या जिन्होंने आदतें बनाई हैं लेकिन थोड़ी कमजोर है, तो हमने देखा वो मतलब पुरुषार्थ की आदतें, तो उन पुरुषार्थ की आदतों को मजबूत करने के लिए बाबा जैसे मदद देने के लिए बंधा हुआ है, और वो दे रहा है। जैसे बताया ना आपने उस दिन की पूरी रात नहीं आई, वो क्या था, बाबा का वास्तव में प्रदान है, उसका आशीर्वाद है, उसकी शक्तियां हमारे तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। वो सुरक्षा कवच है, वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारा साथी है। था ना उस दिन वरदान में कंपनी और कंपेनियन, उसकी कंपनी में रहो, उसको कंपेनियन ना करो, तो वो कंबाइंड वो काम वो होता है। तो ये पुरुषार्थ में अगर हमारी समझ लीजिए समय हमारा सफल हो रहा है, हम एक्यूरेट पुरुषार्थ करने में सफलता महसूस कर रहे हैं, माना मन बाबा की ही मदद मिल रही है, उसका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उसकी दुआएं हमको मिल रही है। क्योंकि लंबे समय से अगर हम पुरुषार्थ उस पुरुषार्थ के प्रति संजीदा रहे हैं, माता से जग रहे हैं, सतर्क रहे हैं, अलर्ट रहे हैं, तो नेचुरली उसकी दृष्टि हमारे पर बनी हुई है। टीचर की भी दृष्टि उसी बच्चे पर बनी रहती है जो लंबे समय से प्रयास कर रहा है, भले वो कई बार असफल हुआ है, लेकिन उसने टाइम वेस्ट नहीं किया है, उसने अपना पूरा विश्व नाखून का जोर लगा के अपना पूरा पुरुषार्थ कर रहा है। तो अंत में वो टीचर भी बंधायमान हो जाता है। ऐसे बाबा भी हम सब बच्चों को मदद करने के लिए बंधा हुआ है। बाबा ने कहा ना, तुम दिल से पुकारो मेरा बाबा, तो बाबा बंधा हुआ मदद करने के लिए।
बाबा शब्द ही सर्व
खजानों की चाबी है, स्लोगन था कल का। तो क्या सच में जो खजाना हमारे पास है उस चाबी को हम समय पर लगाते रहते हैं?
उस
नहीं तो माया ले जाती है चाबी को। अर्थात समय पर हम बाबा के खजाना को बार बार देखते रहते हैं। जैसे घर में अगर कोई खजाना रखा है तो जिसको उससे अटैचमेंट होती क्या करता है, वो बार बार देखेगा अलमारी खोल के ठीक ठाक है, उसको संभाल के रखेगा। तो हमको भी इन खजानों से अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमें अटैचमेंट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन वो अटैचमेंट बढ़ती, गहरा लगाव एकदम बढ़ता है, और वो गहरा लगाव ही हमारा योग की गहरी अनुभूति कराने का माध्यम बन जाता है। तो इन ज्ञान रत्नों से अटैचमेंट होनी चाहिए, तो पुरानी दुनिया से हम डिटैच होते जाएंगे। एक तरफ हमारा अटैचमेंट होती जाएगी तो नेचुरली दूसरी तरफ ध्यान हमारा कम होता जाएगा। तो हमको देखना है कि इस सौदे में जो हमने अविनाशी धर्म को जो मिला है उस धन को हम बांट रहे हैं। उन खजानों को बाबा ने कहा तुम बांटो, जितना बांटेंगे पड़ेंगे। तो ये तीसरी बात है धन की बात बहेंगे। फिर चौथी बात बाबा ने कहा गोल्ड ज्वेलरी तुम बना रहे हो, गोल्डन का थोड़ा एग्जाम्पल दिया कि अगर उसमें खाद होती है लाए तो क्या करते हैं, आग में जलाया जाता है। तो हमको स्वयं के अंदर देखना है कि मेरे संस्कारों में कौन कौन सी ऐसी अलाए है अभी तक भी जो बाधा बन रहे हैं। तो उसमें बाबा ने एक कहा मेरापन, जहां मेरापन है वहां भय पैदा होता है, मैंपन और मेरापन। तो कौन सी बातों को मैंपन, कहीं प्रॉपर्टी में मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, पूरा दिन उसी में बुद्धि तो नहीं जा रही है तो वो रहेंगे, बाबा ने कहा आप ही रहेंगे, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होगी, उतना ट्रस्टी होकर रहेंगे, न्यारा प्यारा होकर रहेंगे तो मैंपन और मेरापन समाप्त होता जाएगा। तो मैंपन और मेरेपन के संस्कारों को हमको योग अग्नि में भस्म करना है। इसलिए साकार मूल्य में आजकल बहुत सारा ये सेंटेंस होता है कि तुमको योग अग्नि से अपने विकर्म को विनाश करना है, विकर्म भस्म कर देने, तुमको योग की अग्नि, याद की अग्नि जला के रखनी है। और उस याद की अग्नि के लिए ज्ञान का घृत बार बार डालते रहना पड़ेगा। जैसे यज्ञ करते तो उसमें घी की अग्नि बार बार घी डालना पड़ता है, तिल जौ डालना पड़ता है, ज्वाला भोगती रहे,
अखंड जलती रहे,
अखंड चलती रहे। तो ऐसे ही योग की अग्नि अखंड चलती रहनी चाहिए। वैसे तो कल बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटा, अब 8 घंटा भी हो जाता नहीं हो सौभाग्य,
8 घंटा आधी घड़ी एक घड़ी
कम से कम 8 घंटा
कम से कम
8 घंटा बताएगा। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारा तो अंतर है अंतिम जो निरंतर योगी निरंतर सेवा, बताया ना कि टाइम कॉन्शियस में जाके 8 घंटे का बोल मारे
साज करके आया और खाया,
आया और खाया, कमाया और खाया, तो चेक करिए ऐसा तो नहीं है। तो यह है अपने को अग्नि में डालना है, देखना। उस बाबा ने कहा कि हिम्मतहीन आत्माओं को या न उम्मीदवार आत्माओं को उम्मीदवार काम तक बनाए, चेक करो चार्ट को, उमंग सामने कितना लाया, दुख तो नहीं दिया लेकिन सुख कितना को दिया,
दुख नहीं दिया तो ये नहीं कि कुछ किया नहीं बेकार
कुछ ना। तो ये भी चेक करो बाबा ने कहा चार्ट रखो अपना बाबा, ईश्वरीय बचत का बजट। फिर बाबा ने कहा वेस्ट और रेस्ट की बात कही, कितना वेस्ट जा रहा है। तो चार बातें इसमें बाबा ने कही, मनसा वाचा कर्मणा और समय, ये जो तुम्हें शक्तियां मिली है बाबा, तो इन शक्तियों को हम कहां तक उनका सदुपयोग कर रहे हैं। मनसा में हमारे संकल्प कितने शक्तिशाली हैं हमारे अंदर, है ना। संसार में बाबा ने उदाहरण करके वेस्ट को बेस्ट बना देते हैं। तो उसी तरह से हमें सारा परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो हमारे सारी अंदर की है। जो भी हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, संकल्पों की अशुद्धियां हैं, तो उन अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए शुद्ध संकल्पों का खजाना हमको बुद्धि में भरपूर करना पड़ेगा। और शुद्ध संकल्प कहां से मिलेगा, बाबा ने कहा मुरली से। तो दिन प्रतिदिन हमारा मुरली से प्यार बढ़ता जाना चाहिए। तो मनसा में वाचा से, बोल से, बोल बोल की भावना कहने बोल तो है लेकिन बोल कौन से बोल रहे हैं, हिम्मत वाले वा, उमंग उत्साह वाले, उम्मीदवार बनने वाले या किसी को हिम्मत ही नहीं। उस दिन भी था ना मुरली में, बोल कैसे होने चाहिए, प्रभावशाली बोल संडे की मुरली में। तो तीन बातों की चेकिंग करो, मनसा वाचा कर्मणा, और चौथी समय, समय जो मिला है तुमको तो समय का चेक करो कि कहां ये जा रहा है। समय एक अमूल्य खजाना है जो हाथ से निकल गए। अगर अभी भी हम अपने इस ब्राह्मण जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो दुख तो बहुत होता है जो हमने इसमें व्यस्त कर लिया है हमको, क्योंकि एहसास हो रहा दिन प्रतिदिन के कितना अमूल्य समय है, और उस अमूल्य समय की पूंजी को हमने ऐसे बर्बाद कर दिया। ये तो उस हीरे की तरह है जो जो एक मछुआरा अंधेरे के टाइम में, सुबह के टाइम में पत्थर फेंकता रहा, पत्थर फेंकता रहा, ढेर सारे पत्थर समुद्र में, लेकिन अंत जो फेंकने का तो हाथ दिखाई तो हीरा है, तो वो सारे हीरे जैसे फेंक दिए। उसी तरह हर सेकंड भी हमारा हीरे के समान है। तो इन जो अमूल्य समय का खजाना है, अमूल्य हीरे के समान है, तो हमारा ये कैसे जा रहा है? नहीं तो अंत में हमको ही पछताना पड़ेगा। अंत में क्या, अभी भी कई कई बार सूक्ष्म अंदर तो पछतावा तो होता ही है ना, जिस जिसने भी समय को गवाया है बेस। तो हमें स्वयं के ऊपर जांच करनी जरूरत है कि इन चार खजानों को कैसे हम, मन की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, कर्म की शक्ति है, समय की शक्ति है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। और खुद ही देखना है, हम दूसरों से प्रश्न पूछने के लिए आतुर हो जाते हैं कि कैसे करें कैसे करें, जबकि पता हमको खुद ही होता है कि हमको ऐसे करना है। करना शुरू कर दो बाबा अपने आप रास्ते खुलेगा।
एक भाई प्रश्न पूछ के आया।
हाँ जी
सचिन भाई जी, और आके वो ना पहले पुरुषार्थ था ना अभी है, प्रश्न पूछ के आया बस सोता रहता है।
हाँ प्रश्न पूछ ले, प्रश्न तो पूछ लिया आपने किसी को, लेकिन वो प्रश्न के उत्तर मिलने के बाद भी तो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे।
लेकिन वो जो प्रश्न पूछ के आया वो दूसरे को बता रहा, उसका पुरुषार्थ बढ़ गया।
हाँ दूसरे को बताने का प्रसाद बढ़ गया, लेकिन खुद का इस बाबा कहते हैं ना कि जो लेक्चर देने वाले होते हैं तो सुनने वाला उसके लिए आगे चला जाता है, जो कोर्स करने वाला पूछा है लेकिन कोर्स करने वाला चला जाता है। तो उसी तरह हमको देखने हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास, हाँ चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे पूछना चाहिए, लेकिन वास्तव में हर प्रश्न के उत्तर का समाधान जो है हमारे पास ही मौजूद होता है, लेकिन उसको थोड़ा धैर्यता पूर्वक, थोड़ा गौर से, थोड़ा गहराई से मुरली के अंदर में ढूंढने जाके तो सोता मिलेगा।
वास्तव में अपने उत्तर जो हम खुद ढूंढते वो नशा रहता है।
बिल्कुल हाँ, जो रास्ता हम खुद तैयार करते हैं तो उस पर नशा रहता है। एक है दूसरे के रास्ते बनाए हुए रास्ते पर चलना, एक है दूसरे की कमाई खाना, लेकिन एक है खुद कमाई खाना, खुद के रास्ते पर चलना, दोनों में अंतर कितना है। उस पर नशा होता है, उस पर शक्ति मिलती है।
अपनी जली रोटी भी पसंद
है। हाँ, अपनी जली रोटी या अपनी सब्जी में डाल दो अच्छी लगेगी, दूसरे की रोटी में नुक्ता चिन्ह भले कितनी बचे लेकिन नुक्ता चिन्ह थोड़ी निकाल दी, लेकिन अपनी रोटी पर थोड़ा निकालता हूँ, जैसी तैसी खा पी के चले जाते हैं, उसमें कितना संतोष होता है, कितना सुख मिलता है। उसी इसलिए बाबा तो कहते हैं अपनी गोट को नशा चले। तो अपने रास्तों का निर्माण करना अपने, ताकि उस जो रास्ते पर निर्माण करें उस रास्ते पीछे आने वाले अपने आप स्वतः चलते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा अंत में जो इस मुरली में जिक्र है कि भगत आत्माएं आएंगी तुमको उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता तुमको ही दिखाना है। भले वो मुक्ति की इच्छा तो रखते हैं लेकिन जानते नहीं मुक्ति बारे में, लेकिन पहुंचाना तो तुमको ही। तो अपने रास्ते तैयार करने, अपने पुरुषार्थ की नई नई योजनाएं तैयार करके, ईश्वर शुभ गोल तैयार करके उन पर चलने का प्रयास करना है, ताकि हम आने वालों के लिए उनको बिल्कुल सहज हो जाए कि करना तो ऐसे करना है, हमारे जीवन को देखकर दूसरा को असमंजस में ना पड़ जाए, उलझन में ना पड़ जाए, ये कैसा है जीवन है, हमारे जीवन को देखकर दूसरा करना है सोचे तो ऐसे करना है, ऐसे एक सहज सार्वचित होगी, सहज पुरुषार्थ होना है। क्योंकि स्वयं कौन, कंपनी हमको किसकी मिली, कंपेनियन कौन है हमारा, तो भगवान क्या कभी उलझन में रहता है, क्या असमंजस में रहता है उसको, उसको अपने प्रति आशंका है नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे गुण कर्तव्य उसके वैसे तुम्हारे, तुम बच्चों के वो ही हमारे संस्कार है, नेचुरल नेचर है हमारी। लेकिन यही तो क्या दादियों ने कह दिया, जो भगवान के संस्कार थे नेचुरल नेचर हो गई थी उनकी, इसलिए उनके अंग संग में आने से क्यों वैसे फीलिंग आती है। उन्होंने अपने रग रग में उसके प्यार को समा लिया, उसके ज्ञान को समा लिया वो, इसलिए उनको रास्ता बनाना ही पड़ा इस मार्ग पर कैसे चलना है, बल्कि उनका जीवन ही एक दूसरे के लिए मार्ग बन गया। मार्गदर्शन देनी ही पड़ी उनको किसी को, दादियों से किसी ने मैंने संतों को प्रश्न पूछा हो, बल्कि उनका जीवन ही प्रश्नों का उत्तर बन गया, अनेक प्रश्नों के उत्तर बन गए, खुली किताब बन गया, उनके हर शब्द में उत्तर ही उत्तर समाये हुए, प्रश्न तो रहेंगे, प्रश्न से पार चले गए।
देखना
तो ब्रह्मा बाबा के जीवन क्या है, एक कंप्यूटर है, बाबा ने कहा कंप्यूटर में कोई भी प्रश्न होता है कंप्यूटर में तो बता देता है, तो दादी का जीवन ऐसे था। तो वही उनके पद चिन्हों पर चलना ही, उन पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलना, तो यही मैं समझता हूँ कि उनके दिल को जीतना है, उनके दिल में बसना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनकी दुआएं अनुभव करनी है, तो ये हमारा जीवन निर्विघ्न बनेगा, साध्य चित्त बनेगा, नहीं तो जनों के भवन जहां में पसरेंगे संसार की तरफ। तो ये देखना है जो भी वेस्ट है, जितना भी हमने गवाया है आज तक, उस वेस्ट को वेस्ट में परिवर्तन करने की कला सीखनी है। कैसे दादी ने स्थूल रूप में भी और वर्तमान में बचत का बजट जो बाबा ने कहा ईश्वरीय बजट का बना, तो कौन सा बजट कि विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करना है, खुशी मिलाना, उनको विश्व की आत्माओं को सुख शांति देनी है, मुक्ति जीवन मुक्ति देनी है, ना केवल आत्माओं को बल्कि प्रकृति को भी पावन बनाना है, सुख शांति देनी है। ये तुम बच्चों का कर्तव्य है, ये ईश्वरीय बचत का बजट बनाओ, सदा समृद्धि में रखो इसको। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिए, जैसे संसार की जो गवर्नमेंट स्थूल गवर्नमेंट क्या करती है,
स्कीम
बनाती है, मकान बिजली पानी पैसे देखेंगे, सारे साल का बजट बनाती है, उस बजट के आधार पर ही सारी अर्थव्यवस्था को उसको सुनियोजित तरीके से बेहतर चलाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित करती है। उसी तरह से हम सबको इस संसार का बजट बनाना है कि कैसे कौन से इसमें परम को किसको साकार देना है, 24 आवर प्रकृति को, विश्व की आत्माओं को, तड़ती बढ़ती आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को साकार देना है, जो आत्माएं भगत आत्माएं हैं उनकी शुभ मनों को हमने पूर्ण करनी है, ऐसे संसार में रोगी आत्माएं हैं, संसार में जो आज भय के साय में जी रही हैं, मौत का डर है जिनको कदम कदम पर, उन सबको कैसे साकार देना है, तो हमको दिल शिकस्त आत्मा जो है उन कैसे उनके दिल में भी नया उमंग उत्साह पैदा हो, वो हमको देखना है। तो सारे दिन में हमको ईश्वरीय बचत का बजट बनाना है, अपना स्वयं ही तैयार है, इसलिए रोज रोज हमको नया चार्ट खुद ही बनाए, वो अच्छा रहता है। बिल्कुल, तो ये है ईश्वरीय बचत का बजट, ये बाबा कहता है। देखो फिर बाबा ने आगे कुमारों से बात की है ना, फिर कुमार तो बाबा ने कहा कुमार जीवन कैसा है, लकी जीवन है, कितना लकी है,
सीढ़ी चढ़ने से बच गए।
क्यों लकी है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने से
बच गए,
जो चढ़े हो वो तो उतरने की
उतर रहे हैं,
प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, लेकिन तुम बच्चे चढ़े नहीं। तो कुमार जीवन कितना सचमुच बाबा को दिल से थैंक्स देना चाहिए, है जी, निर्वंधन जीवन है, कोई बदला नहीं है, उड़ता पंछी है, स्वतंत्र जीवन है। तो जैसे हम सच्ची स्वतंत्रता की महसूसता अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इसी स्वतंत्रता के लिए जो संसार तड़फ रहा है, तो उस तड़फन से हमको मुक्त करना है, जो संसार अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, अनेक प्रकार के जंजीरों में बंधा हुआ है, कई प्रकार की सूक्ष्म रस्सियां हैं, चाहे वो उनकी लौकिक संबंधों की है, चाहे वो लौकिक जिम्मेवारियों की है, चाहे उनकी वो आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो उनके अपने मन की कई समस्याएं हैं, चाहे उनके पिछले जन्मों के अर्थात इस ब्राह्मण जन्म से पहले का जो जन्म है शुद्ध जन्म के, उसके कई ऐसे कृत्य है, कई ऐसे कर्म है, उनसे वो बंधे हुए
दोनों का बैलेंस नहीं रख पाते।
हाँ,
इधर देखा भाई है वो ना, इधर का
अनबैलेंस हो जाता है उधकर। तो वास्तव में बाबा ने हम सबको ये संतुलित जीवन जीने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी हुई। घर में रहते हो तो विशेष इन पर बहुत हमको सावधानी रखनी है कि घर में रहकर कैसे बजट बनाना है, एक लौकिक का भी ध्यान रखना है, अलौकिक का भी ध्यान रखना है। बाबा छोड़ने के लिए तो कहते नहीं, और घर में तो रहने वाले और एक एग्जाम्पल बनकर तैयार हो जाते हैं। कई ऐसे संसार में बाबा के बच्चे हैं ब्राह्मण जगत में जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हैं, उनके जीवन को देखकर उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया है, एक संतुलित जीवन जी रहे हैं। बाबा ने कहा जब बैलेंस है ब्लेसिंग स्वतः मिलती है, लेने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन को, अपनी विचारधारा को बदला, अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदला है। लेकिन ऐसा भी बदलाव नहीं कि अपनी जीवन शैली से घर वाले सब डिस्टर्ब, बड़ा युक्तियुक्त तरीके से, बड़ा सुनियोजित तरीके से बदल गए। और उसको बदलने के लिए बाबा ने ताकत दी, शक्ति दी है। उसमें अपनी हम मन मत मिक्स करें तो फिर उतनी ताकत नहीं मिलती है। इसलिए बैलेंस रखने के भी कला, जो ब्राह्मण में 16 कलाएं हैं वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, तो एक बैलेंस रखने की कला भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। बैलेंस रखने की कला भी बहुत चाहिए। जैसे हम मान लीजिए मधुबन में रहते हैं, डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं, तो यहां भी हमको बहुत बैलेंस रखने की जरूरत है। अगर हमारा सेवा छोड़ के योग में चले जाए, योग छोड़ के कहीं दूसरे किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, या अपनी सेवा को समय पर जिम्मेवारी पूर्वक नहीं निभाए, तो बैलेंस नहीं रहा।
सही समय पर सही काम ना करना गड़बड़ करते हैं। योग के समय ज्ञान का वो करना गलत है,
बिल्कुल।
सेवा के समय योग करना गलत है।
हाँ, एक अलग है कि कोई ऐसी समय परिस्थिति आती है कि उस सेवा को उसी समय ही किया जा सकता है, भले वो योग का टाइम, वो एक अलग बात है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को अभी ये सतड़ा नहीं, योग का टाइम है तो वो योग करने के बाद इलाज करूंगा पेशेंट का, उसको तो जाना
पड़ेगा।
इमरजेंसी है, कोई घटना घटित हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और हमारा योग का टाइम चल रहा है, तो हम ये थोड़ा सोचेंगे योग के बाद जाएंगे, तब तक तो वो 9-2-11 के हम शांति हो जाएगा। तो हमको ये बैलेंस की कला सीखी। हाँ, जो ऐसे कि आवश्यक सेवाएं नहीं है, जिन सेवाओं को हम योग के बाद भी कर सकते हैं, तो हम योग के बाद ही करें, क्योंकि वो टाइम महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस समय हमको योग के टाइम में आवश्यक सेवा है और उस सेवा में चले जाते हैं, तो उस सेवा में भी हमारे योग के नंबर जमा हो जाएंगे, एक संतुष्टता रहेगी अंदर।
योग के सेवा कैसे बनेंगे?
हाँ, ये नंबर कैसे बनेंगे? और फिर बाबा अपने उस दिन था ना मुरली में कि तुम्हें ब्राह्मण परिवार में भी साक्षियों के देखना है, क्योंकि पाठ सब करना है। हर उसमें सेंटेंस ऐसे था, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षियों के देखना है। हम किसी के पुरुषार्थ को देख के प्रभावित भी नहीं हो, अगर कोई हमारे से दूसरा सामने वाला आगे जा रहा है तो उसको भी साक्षी होकर देखना है, क्यों? उसमें साक्षी होकर देखना अर्थात उसके पुरुषार्थ को हमको ऐसे देखना है कि ये जो पुरुषार्थ में हमारे से आगे जा रहा है ना, हमारा रास्ता खुल रहा है। अगर हम ऐसा एक संकल्प रखेंगे तो नेचुरली हमारा भी पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। अगर हम उसमें ईर्ष्या का भाव पैदा करें तो हमारे पैदा होंगे।
ईर्ष्या जो अपन से आगे जाता उससे ईर्ष्या होती है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता उससे घृणा
होती है।
रूम में देखा कि जो जल्दी उठता है ना, दूसरे को उठाएगा जरूर, लेकिन अपने सब कुछ करने के बाद खुद जाए पहले, ताकि वो ना आगे चलो,
वो ना आगे चलो। तो ये सब चीज सूक्ष्म, इसलिए पुरुषार्थ में आगे कोई जाता है बहुत अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाने में हमारा सूक्ष्म में सहयोग हो तो हमारा रास्ता अपने आप ही खुल जाता है, हमारे कई प्रकार के विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। दूसरा रास्ता तैयार करके जा रहे हैं, एक्चुअली हमारे विघ्न अपने नष्ट हो गए। तो भी हमको देखना है कि दूसरे के पुरुष, तो ये कुमार जीवन है, इस कुमार जीवन में जैसे हम स्वतंत्र पंछी हैं, उड़ता पंछी हैं, कैसे कैसे हमारे अपने जीवन को निर्विघ्न बनाया है, तो दूसरों के लिए प्रैक्टिकल में उनके लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत हो। फिर बाबा ने कुमारियों से बात की, कुमारियां था उनको सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है, ये श्रेष्ठ गिफ्ट है। तो जितना बाबा ने कहा तुम शक्तिशाली बनेंगे, उतना सेवा भी शक्तिशाली होगा। स्वयं कमजोर है तो सेवा भी कमजोर है। तो ये ट्रेनिंग वाली कुमारियां हैं जो पढ़ रही हैं, पढ़ भी रही हैं, ट्रेनिंग भी ले रही हैं। तो बाबा ने कहा ट्रेनिंग भी लो, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं जिनके साथ में आप रहती हैं, उनके संग में अपने को आगे बढ़ाते रहो। तो क्या होगा, फिर आगे बढ़ाते रहेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है आगे बढ़ने के लिए। तो कुमारी जीवन भी बाबा कहते हैं कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी तो पिछले मूल्य में था ना, एक दादी दीदी बन जाती है पहले। कुमारियों पर तो और ही बड़ी जिम्मेवारी है, नौकरी की टोकरी क्या करनी है। तो बाबा इसमें वही इशारा करे कि नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बिशप को संभालना है, बिशप की रोशनी है, तो बिशप को नई राह दिखाने वाली। तो कुमारी उनके प्रति बाबा का फिर है सेवादारी नियमित टीचर से बाबा बात की। तो सेवादारी अर्थात मित आत्मा है, और जहां निमित्त भाव है वहां सफलता स्वतः मिलती है। लेकिन निमित्त भाव एक बहुत बड़ी अंदर की एक मानसिक अवस्था है। निमित्त कहना तो आसान है, लेकिन वहां निमित्त अर्थात जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमारा लगाव ना हो, कहीं अटैचमेंट ना हो, उसमें स्वार्थ भाव ना हो, कहीं अकल्याण की भावना या किसी को गिराने की ना हो, उसमें कहीं ऐसा कोई श्रीमत के खिलाफ हमारे को मन का ऐसा षड्यंत्र ना हो। निमित्त भाव अर्थात जैसे जिसने कहा वैसे उसको कर दिया, न्यारा प्यारा हुआ, तो सेवा में स्वतः सफलता मिलेगी। फिर इसमें सेवा में सफलता के बाबा ने दो चार सूत्र और भी बताए हैं। एक मुख्य सूत्र ये बताया है कि जितना तुम यहां इससे व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे, सौ में और सेवा में व्यर्थ को समाप्त करेंगे तो सौ भी समर्थ बनेगा और सेवा भी समर्थ बन जाएगी और सफलता मिलती जाएगी। तो व्यर्थ से मुक्त होने के लिए देखना है। फिर दूसरा एक बताया कि स्वयं उमंग उत्साह में रहेंगे तो दूसरों को उमंग चाहिए। टीचर अर्थात स्वयं सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, और अर्थात हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मत बांध रखने वाले। एक बाबा ने पहले मूल्य में इसके पहले जिक्र किया कि तुम परमात्म नैनों के सितारे हो, नैनों के नूर हो, दोस्तों को खुशी देने वाले हो। तो इसमें भी ये जिक्र किया कि स्वयं उमंग उत्साह में सदा रहने वाले, ये भी एक सफलता का सूत्र है। ऐसा नहीं है कि मैं गुप्त हूं अंदर तो, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं है, भावने को छिपे नहीं रह सकते। दिखता उसके कर्मों से, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, चाल चलन से दिखाई देता है ये व्यक्ति कौन सी दशा में है, कौन सी दिशा से गुजरा है और कौन सी दशा में है। तो भावने का तुम बच्चों को तो सदा परिस्थिति की दशा बैठी हुई है, कुछ मिलता ना किसी ने पहले सदा बृहस्पति बाप की बृहस्पति दशा को जाइए। तो उमंग उत्साह में भी रहना है, तो इससे वाले टीचर्स बहनों के साथ था। फिर नेक्स्ट है बाबा ने कहा सबसे ज्यादा खुशी किसको है, तो बाबा ने कहा क्यों नहीं कहते कि मुझे मेरे को है क्यों, क्योंकि द्वापर से भक्ति की है, जो इच्छाएं थी वो सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। फिर एक बाबा ने पहले एक बात और भी धन दान वाली बात कही थी, वो उसमें भी कि रॉयल फैमिली वालों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रजा को कमाना पड़ता है। रॉयल फैमिली वाले जो हैं वो वहां भी इतना दान कर सकेंगे, मतलब इतना धन हो उनके पास,
अंतिम जन्म तक
दाल रोटी मिले,
भिखारीपन नहीं रहेगा,
अंतिम जन्म तक दाल रोटी मिलेगी। और उस दिन बाबा ने मुरली में सागर में कहा था कि सबसे अच्छा भोजन कौन सा है,
दाल भात।
ज्ञान का दाल भात भी खाते रहना है आपको, स्थूल से सूक्ष्म भी जाना है, ऐसा नहीं कि वो दाल भात याद आता रहे तो ज्ञान का दाल भात खाना, ज्ञान की दाल रोटी खाती रहनी है। तो ये भी था, तो ये तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा खुशी किसको है, तुम बच्चों का है। तो इसमें बताया कि तुम बच्चे खुश तो सारा विश्व खुश है, तुम बच्चे दुख अशांति से मुक्त तो सारे विश्व को दुख अशांति से मुक्त कर सकते हैं। तुम्हारे सारे जीवन का इसका विश्व का आधार है। तो ये था खुशी, तुम्हारी खुशी विश्व को खुशी दिलाने वाली, कितनी बड़ी बात है। हम खुश हैं तो सारा विश्व खुश है, आप खुश तो विश्व खुश, जब तक आप बदल नहीं जाते तो विश्व कैसे बदलेगा। आप बदल के तो विश्व भी बदल जाए, विश्व की दुख अशांति खत्म हो जाएगी, नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कर्मों का खाता जमा करते चलो, खुशी का खजाना जमा करो, खुशी का खजाना बांटते चलो, आप सभी खुशी के कौन हो, खान हो, और दुनिया वाले भिखारी हैं बेचारे, तरस हैं खुशी के, आज माहौल तो वही है ना, सच्ची खुशी का है। चिंता की लिखी नहीं उनके माथे पर दिखाई दी, चिंता की चिता पर चल रही नहीं। मूल्य मित्र सबसे बड़ा रोग कौन सा है? पिछले संडे के मूल्य मित्र चिंता, बदनामता किसमें था? चिंता सबसे बड़ा रोग,
उसकी इलाज
इलाज में इलाज। तो ये था। फिर बाबा ने समीप पांच सितारों के लक्षण बताए, तो समीप सितारे अर्थात जो बाप के गुण है कर्तव्यों प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप में उनके चेहरे पर दिखाई देंगे, साक्षात्कार होगा, उनका मुखड़ा दर्पण बन जाएगा, उनको देख के बाप दादा याद आएगा, शकल तो दिखाई देगी उनकी लेकिन याद में लगनी अवस्था में बैठे होंगे तो बाप दिखाई देगा। अगर उनके मुख से बाबा के बोल निकल रहे हैं तो बुद्धि बाबा की तरफ ही जाएगी, तो बाप दादा प्रत्यक्ष होगा उनके, साक्षात हो रहे उनके मुख से। तो संशोष पादर करेंगे, आकर्षण मूर्त होंगे, हर्षित मूर्त और साथ साथ में आकर्षण मूर्त। तो ये मुरली थी, आज की मुरली 24 मई 2020 जो कि 15 जनवरी 86 की है। सस्ता सौदा और बचत का बजट, तो हमको सारे दिन में देखना है कि हम सारे दिन में अपने मुरली को बार बार घोटें, स्वयं की चेकिंग करें, जांच करें, इन महावाक्यों का अनुसरण कर चलें, अपने जीवन में लाएं, उसका चिंतन करें, सुने सुनाए। आज की प्रधान में कहना दान करना है, भले किसी को भी दो भाई भी हो आपस में चर्चा करके बैठे तो एक बहुत सुंदर हमको विधि है, क्योंकि दो में चर्चा करना क्या होता है, सामने वाला अगर चर्चा करेंगे आपस में बीच बीच में ठीक है, लेकिन उसका चर्चा का भी थोड़ा एक तरीका बदलाव होना चाहिए उसमें। जैसे एक दो आदमी समझ लीजिए बैठे हैं, तो एक भाई जो है वो पूरी मुरली पढ़ के आया अच्छी तरह से और सामने वाले को पूरी तरह सुनाए, और सामने वाले में सुनने की शक्ति चाहिए, उसमें बीच में नहीं बोले, तो सामने वाले जो सुनाने वाला उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसमें उसको हेल्प नहीं करनी सुनाने की, उसको कॉन्फिडेंस बोलो तो सुना नहीं, सुना रहा सुन रहा, सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना, सुनने की कला और सुनाने की कला ऐसे दोनों विकसित होंगी। तो इसे परिचर्चा करनी सारे दिन बड़े दो ही व्यक्तियों, उसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और उस सुनाते सुनाते बाबा की शक्तियों का अनुभव होगा, क्योंकि ये ज्ञान जो है हर महावाक्य शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी की महावाक्य है, तो हमको भी मस्त सर्वशक्तिवान बनने वाला है। इसलिए चर्चा करना में क्या होता है, कुछ पॉइंट सामने वाला को याद होंगे, कुछ मुझे याद होंगे, तो दोनों आपस में सुना सुना पूरा कर देंगे, लेकिन नहीं, दूसरा तरीका हमको सारे की सारे मुरली खुद एक ही भाई को सुनानी है, और दूसरे दिन में दूसरा भाई दूसरी मुरली को सुनाए, ताकि अंदर में एक पुरुषार्थ की चिंता चाहिए। नहीं तो हम समझ ले चार लोग बैठे तो चार लोग हम सोचेंगे, हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो चार लोग थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से नजर पड़ के आएंगे, क्यों, क्योंकि सोचेंगे वो भी पढ़ के आया, वो भी पढ़ के आया, तो कोई ना कोई तो सुना ही दे, तुमको अंदर से चिंता नहीं आती हो। तो हमको पुरुषार्थ के मारे ना अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा खुद का ही पुरुषार्थ बढ़ रहा है। हमें दूसरे कल्याण करने की चिंता नहीं है, दूसरे का कल्याण स्वतः हो जाएगा जब हम कल्याण की चिंगारी स्वयं में जला कर रखेंगे। तो इसलिए चिंता अपने पुरुषार्थ के लिए चाहिए। सुनना सुनाना तो दूर की बात है, वो बड़े क्लास जाए ना जाए वो छोड़ दो, स्वयं का पुरुषार्थ देखना है, और जितना हम इस पर चिंतन किया हुआ समय पर जरूर काम में आएगा। बाबा ने कहा तुम धरती के होली सितारे हो।
इससे फायदा ये होता है कि हम जिम्मेवार हो जाते हैं ना, तो
जिम्मेवारी पूरी कंधों पर आ जाती है,
तो वो उमंग
हाँ उमंग समय रहता है, बिल्कुल
पूरा अपन को लगता है कि अच्छा
अगर हम इसको छोड़ देते, समझ लीजिए अभी से लॉकडाउन चल रहा है तो हम कई बहाने लगा सकते हैं, लेकिन हमको अगर उन्नति करनी है, स्वयं की उन्नति करनी है, एक बाबा के श्रीमत के अनुसार यज्ञ के माहौल को शक्तिशाली बनाना है, वातावरण एकदम प्योर वाइब्रेशन वाला बनाए जो दूसरों को मनोत्साह में रखे आगे बढ़ाए, तो कुछ तो खुद ही चिंतन करना पड़ेगा, ऐसे दूसरे के भरोसे पर नहीं। इसलिए अभी मोदी जी का नारा क्या है, आत्मनिर्भर पुरुषार्थ में भी आत्मनिर्भर बनना है।
कब तक इस बैसाखी के सहारे चलेंगे,
दूसरों की बैसाखी के सहारे कब तक चलेंगे,
शायद ये चांस मिल गया कि अपना
ये बिल्कुल हाँ, क्योंकि भाव ने कहा सारे कल्प की कमाई का समय है, सारे कल्प में भिखारी नहीं बनेंगे, संपन्न रहेंगे। अगर इसमें हम अपने को ज्ञान धन से संपन्न रखते हैं तो सारी कल्प में भी हम ज्ञान धन से अलावा जो दूसरा धन है उससे भी विनाशी धन से भी संपन्न रहेंगे, दूसरों को दान पुण्य इतना धन होगा भगवान का दान पुण्य कर सकेंगे।
अगर अपन देखे तो जो समय बीता है इस समय इंडिविजुअल हर एक का पुरुषार्थ अच्छा,
बिल्कुल व्यक्तिगत पुरुषार्थ वो इंडिविजुअल पुरुषार्थ ही वो अच्छा है,
वो उसके लिए चांस मिलेगा, सो
चांस मिल गया तो गोल्डन चांस, इसलिए चांस को चांसलर बन के पूरा इसका सदुपयोग करना, पूरा फायदा लेना इसका। तो ये थी आज की सारी मूल्य। तो रत्नाकर बाप ने देखा सौदागर बच्चों को, बाप मुस्कुराए कि भोले वाले बच्चे हैं, सौदा कैसे कर लिया, एक सेकंड में कर लिया, क्या बोला, दिल से मेरा बाबा, और सारा उनकी सारी भाषाएं ले ली। संसार में हद के सौदे हैं लेकिन उनमें मेहनत करनी पड़ती है, महंगा है समय भी देना पड़ता है, लेकिन ये सौदा ना मेहनत है ना महंगा, ना मेहनत करनी पड़ती है, इतना सस्ता सौदा कर लिया और दिल से कहा मेरा बाबा है ना। तो बाबा ने कहा ये सौदा करने वाले जो बच्चे उनकी लिस्ट, उनकी लिस्ट मेरे पास है, डायरेक्टर संसार में वीआईपी की होती है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे वीआईपी, भोलों का भगवान का कहते हैं, संसारिक चतुराई बाप को पसंद नहीं है, बाप भले चतुर सुजान है लेकिन उसको भोले वाले बच्चे पसंद है, संसार के बाह्यमुखी बच्चे पसंद नहीं है, अंतर्मुखी होकर जो पुरुषार्थ में लगे रहते हैं वो बाबा को पसंद बच्चे हैं, है ना। ये कौन सा राज्य है, भय वाला राज्य नहीं है, निर्भय राज्य बनना है। दुनिया वाले तो धन कमाया तो वो भी भय में, खा भी भय में रहे, सो भी भय में रहे, और आप बेफिक्र बादशाह बच्चे हो, है ना। तो ये हमको देखना है, धन की बात आती है तो ज्ञान धन को हमने अपने बुद्धि रूपी झोली में कितना भर के रखा उसकी चेकिंग करनी है। कौन कौन से ऐसे भय तो नहीं है कोई जो हम अपने भविष्य को लेकर, पुरुषार्थ को लेकर आशंकित है। जो भी 24 आवर की हमारी दिनचर्या है तो एक आत्म संतोष बढ़ना चाहिए दिन को, संपूर्ण आत्म संतोष तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पुरुषार्थ का तो असंतोष होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए कि ठीक हम अपने इस समय को सफल कर लें। तो बाबा ने कहा अपना चार्ट रखो, चेकिंग रखो, जांच करो, है ना, अपने संस्कारों को योगिनी में जला दो, कौन से संस्कार हैं, मेरापन और मैंपन, ये संस्कार ही भय पैदा करते हैं, तो ये अपनी जांच करो। फिर बाबा ने कहा रॉयल फैमिली के, रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं है, प्रजा को कमाना पड़ता है, रॉयल फैमिली अर्थात इतना धन होगा कि द्वापर युग में भी जितना चाहो दान कर सकते हैं, भिखारी नहीं बनना पड़ेगा, दाल रोटी मिलती रहेगी, अभी भी अंतिम जन्म में तुम दाल रोटी तो खा रहे हो। फिर बेस्ट को बेस्ट करने का तरीका बताएं, जो भी विद्यार्थी आते हैं उसको कैसे हमको समर्थ में बदलना है, कौन कौन से हमारे बाबा का मनसा वाणी कर्म में स्मय की शक्ति तुम्हारे पास है, इनको कैसे समर्थ करना है ये अपना। फिर बाबा ने कहा सिर्फ बजट बना, देखो किसी को दुख तो नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, खाली देखो साधारण साधारण बोलना साधारण चलना ये भी व्यर्थ में जमा होता है, जमा तो नहीं होना है, वो भी एक हिसाब से फिर व्यर्थ में गया ना, जमा नहीं हुआ तो माना व्यर्थ में गया। तो ईश्वर बजट बना, एग्जाम्पल दिया जैसे वो बिजली पानी मकान का बनाते हैं, तो आप अपना कितनी नाउमेद आत्मा को उम्मीदवार बनाया, हिम्मत ही आत्मा को मत मान बनाया, उमंग उत्साह में लाया, खुशी दी, वो चेक करो जांच करो। और फिर बाबा ने क्या कहा, कुमारों से बात की, कुमारों से बात की, फिर एक कार्य बताया अपने कि विश्व के प्रति अपना ईश्वर बजट में क्या करना है कि विश्व की जो आत्माएं हैं और प्रकृति हैं उनको सुख शांति देने के तुम निमित्त हो, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारा ईश्वर बजट है ये, है ना। तो कुमारों को लकी है, बंधन मुक्त है, स्वतंत्र है, उल्टा पंछी है, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए, वो तो उतर रहे हैं, उनको ही पूछा तुम भी तो कुमार कुमारी है ना। फिर कुमारियों के प्रति श्रेष्ठ सेवा की गिफ्ट मिली है, आगे बढ़ने की गिफ्ट है, तो इसको संभाले अपना शक्तिशाली, स्वयं की स्थिति बनाएंगे तो सेवा भी शक्तिशाली होगी, स्वयं कमजोर तो सेवा भी कमजोर होगी, तो स्वयं को शक्तिशाली बनाओ। तो ये कुमारियों जो निमित्त आत्माएं हैं उनके संग में रखकर अपना आगे बढ़ते रहो, और आगे बढ़ना अपना ही फायदा है। फिर बाबा ने सेवादारी टीचर मैंने से बात की, वो निमित्त आत्माएं हैं, जहाँ निमित्त भाव है वहां सेवा सफलता स्वतः मिलती है, निमित्त आत्माएं हैं अर्थात उमंग उत्साह में रहने वाले, निमित्त आत्माएं अर्थात दूसरों में उम्मीद जगाने वाले, निमित्त आत्माएं अर्थात जो स्वयं को और सेवा में व्यर्थ को समाप्त करती हैं वो ही स्वयं और सेवा को समर्थ बना सकती है। तो व्यर्थ से मुक्त रहने वाली निमित्त आत्माएं उमंग साधना निमित्तात्मा है। तो इन निमित्तात्मा की बात ही फिर बाबा ने कहा सबसे ज्यादा खुशी किसको है, तो बाबा ने कहा क्यों नहीं कहते मेरे को है, तो वो वाली बातें सारी खुशी की कि तुम खुश तो विश्व भी खुश है, तुम दुखी तो विश्व दुखी, तो सुन को सारे में कैसे कैसे कुछ चेक करना है। फिर वहां का समीप आत्माओं के लक्षण समानता गुण कर्तव्य बाप के समान देखने, उनका मुखड़ा साक्षात्कार तर्पण साक्षात्कार कराने वाला, तो ये सारी चीजें चेक करनी है। तो सारे दिन हम इन बातों का चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम बाबा की आश्रम पर पूरा उतर सकेंगे। ओम शांति।